नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय उद्योग परिसंघ की निर्यात आयात पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन संजय बुधिया ने कहा कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिका द्वारा वरीयता की सामान्यकृत प्रणाली लाभ की बहाली के लिए शीघ्र समाधान आज समय की जरूरत है, क्योंकि इससे द्विपक्षीय व्यापार को और तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और अमेरिका घरेलू निर्यातकों के लिए वरीयता की सामान्यकृत प्रणाली लाभ की बहाली की मांग पर चर्चा करने को सहमत हो गए हैं। इससे घरेलू निर्यातकों को फायदा होगा। अमेरिका में पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2019 में भारत के लिए GSP को रद्द कर दिया था। GSP पात्र विकासशील देशों को अमेरिका को शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देता है। बुधिया ने कहा कि GSP के तहत अमेरिकी आयात का लगभग 2/3 हिस्सा कच्चे माल, कलपुर्जे या मशीनरी और उपकरणों के रूप में होता है। इसका उपयोग अमेरिकी कंपनियों द्वारा घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है। बुधिया पैटर्न ग्रुप के प्रबंध निदेशक भी हैं। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष परस्पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए सहमत हुए हैं। जल्द से जल्द समाधान समय की मांग है। उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों देशों के बीच सहयोग के बड़े अवसर हैं, इसलिए 2030 तक $500 अरब के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्थिक भागीदारी को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। पेटीएम ब्रांड के तहत सेवाएं देने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के सकल व्यापारिक मूल्य में अप्रैल जून तिमाही में 37% की वृद्धि हुई है और ये 4.05 लाख करोड़ रहा है। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। GMV से आशय पेटीएम के मंच के जरिए दुकानदारों को आदि किए जाने वाले कुल भुगतान से है। इससे पिछले साल की जून तिमाही में पेटीएम का GMV 2.96 लाख करोड़ रुपए था। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा, जून तिमाही में GMV 4.05 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 37% की वृद्धि है। तिमाही के दौरान पेटीएम का ऋण वितरण 2.5 गुना होकर 14,845 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 5,554 करोड़ रुपए था। इस दौरान पेटीएम द्वारा किए गए ऋणों की संख्या 51% बढ़कर 85 लाख से 1.28 करोड़ हो गई। ठेके पर विनिर्माण सेवाएं देने वाली कंपनी सीजीन इंटरनेशनल ने स्टेलिस बायोफार्मा के एक विनिर्माण कारखाने का 702 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने का करार किया है। सीजीन ने मंगलवार देर रात बयान में कहा, कंपनी ने बेंगलुरु में स्थित यूनिट 3 बायोलॉजिक्स विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण करने के लिए स्टेलिक्स के साथ एक पक्के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कारखाने को कोविड के टीके बनाने के लिए शुरू किया गया था। अब इसका नए सिरे से इस्तेमाल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के विनिर्माण के लिए किया जा रहा है। सीजीन ने कहा कि वो इस कारखाने पर 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि सौदा पूरा होने के बाद ये स्थल सीजीन के लिए 20,000 लीटर की स्थापित बायोलॉजिक्स दवा पदार्थ निर्माण क्षमता जोड़ेगा। स्थानीय शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ खुले, पर मुनाफा वसूली का सिलसिला चलने से बाद में नुकसान में आ गए। पिछले कुछ सत्रों से शेयर बाजार लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 44.19 अंक की बढ़त के साथ 65,523.24 अंक पर खुला। बाद में ये 105.28 अंक की बढ़त के साथ 65,584.33 अंक पर पहुँच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 20.4 अंक की तेजी के साथ 19,409.40 अंक पर खुला और बाद में 32.6 अंक की बढ़त के साथ 19,421.60 अंक पर पहुंच गया। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआत बढ़त को कायम नहीं रख पाए। बाद में सेंसेक्स 65.60 अंक के नुकसान के साथ 65,413.45 अंक पर आ गया। निफ्टी भी 16 अंक के नुकसान से 19,373 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, LNT, मारुति, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले के शेयर नुकसान में थे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शिंघाई कंपोजिट और हांगकॉन्ग के हैंग सेंग नुकसान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को बंद रहे थे। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती तथा आयातकों की डॉलर मांग से बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 7 पैसे टूटकर 82.08 प्रति डॉलर पर आ गया। फॉरेक्स डीलरों ने कहा कि विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से स्थानीय मुद्रा का नुकसान सीमित रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.05 पर खुला और बाद में ये और टूटकर 82.08 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। ये पिछले बंद भाव के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट है। मंगलवार को रुपया 82.01 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इसी बीच अन्य मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.08% की बढ़त के साथ 103.12 पर था। ब्रेंट कच्चा तेल 0.59% की बढ़त के साथ $75.80 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।